नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 पारित कर दिया है। राज्यसभा में देर रात चर्चा के बाद इसे मंजूरी मिली। लोकसभा ने पहले ही इस विधेयक को पारित कर दिया था। विधेयक के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार राष्ट्र सर्वोपरि के आदर्श वाक्य के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गांवों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता।
हम पैसा बचाना नहीं चाहते, हम रोजगार देना चाहते हैं, गांव को विकसित बनाना चाहते हैं। इसलिए इसी साल बजट में प्रस्तावित है 1,51,282 करोड़ रुपया। और ये रुपया कहाँ जाएगा? ये मजदूरों को मजदूरी के लिए भी जाएगा, ये गांव के विकास के लिए भी जाएगा। अकेले भारत सरकार 95,600 करोड़ रुपया खर्चा करेगी।
संसद ने भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन और विकास शांति विधेयक को भी पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य देशवासियों के कल्याण के लिए परमाणु ऊर्जा और आयनीकरण विकिरण के विकास के माध्यम से परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना है। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं।
बिफोर 2013-14 से पहले परमाणु ऊर्जा विभाग का बजट महज 13,889 करोड़ रुपए था, जो इस वर्ष बढ़कर 37,483 करोड़ का हो गया है। इसमें करीब 107% की बढ़ोतरी हुई है। 2015 में सरकार ने एक और साहसिक निर्णय लिया और परमाणु क्षेत्र को संयुक्त उद्यमों के लिए खोल दिया, लेकिन संयुक्त उद्यम केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तक ही सीमित थे, ये निजी क्षेत्र के लिए नहीं था। 2017 में पहली बार मंत्रिमंडल ने 10 परमाणु रिएक्टरों के निर्माण को मंजूरी दी।
अप्रूवल वॉज गिवन टू सेट अप 10 रिएक्टर्स।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक ने मस्कत में ऑर्डर ऑफ ओमान पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को दोनों देशों की सदियों पुरानी मित्रता को समर्पित किया। इससे पहले भारत और ओमान ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर कर द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। दोनों नेताओं ने व्यक्तिगत और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक भी की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन के पारंपरिक चिकित्सा पर द्वितीय वैश्विक शिखर सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आयुष क्षेत्र के लिए एक प्रमुख डिजिटल पोर्टल माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज सहित कई महत्वपूर्ण आयुष पहलों का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पंचायती राज संस्थाओं में समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पहलों को मजबूत करने के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की। मंत्रालय ने कहा कि यह परियोजना 20 राज्यों में लागू की जाएगी। इसमें 81 आपदा संभावित जिले शामिल होंगे, जिनमें से प्रत्येक में 20 ग्राम पंचायतें होंगी। बांग्लादेश के ढाका में प्रमुख मीडिया संस्थानों को निशाना बनाकर किए जा रहे भीड़ के हमलों से कानून व्यवस्था और बिगड़ गई है। इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद उपद्रवियों ने प्रोथोम आलो के कार्यालयों में तोड़फोड़ की और कारवान बाजार स्थित द डेली स्टार की इमारत में आग लगा दी। पत्रकारों ने बताया कि हमले के दौरान वे अंदर फंसे थे। इस बीच बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह शहर में कल रात भारतीय सहायक उच्चायोग के आवास पर भी हमले और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। उपद्रवियों ने इलाके में पत्थरबाजी और आगजनी की। इन घटनाओं के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के कारण कई उड़ानें और ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।